نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اگلی دعا دیکھیں گے درود شریف کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے. پیج نمبر 95 ہے. حدیث میرے ساتھ اب دہرائیے. یہ اس بک کے چیپٹر کی آخری دعا بھی ہے. عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل. اب یہاں سے آگے دعا کے الفاظ ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. متفق علی. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ سب کا نہیں, بخاری اور مسلم. یہ حدیث کی وہ قسمیں ہوتی ہیں جس کو امام بخاری نے بھی اپنی کتاب میں لکھا اور امام مسلم نے بھی, ٹھیک ہے, کہ دونوں اس پہ. بعض اس کو کہتے ہیں کہ متفق علیہ الشیخان, دو شیخ اس پر متفق تھے, یعنی امام بخاری اور مسلم. ترجمہ دیکھتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, مجھے کوئی دعا سکھلائیے جو میں نماز میں پڑھوں. آپ نے فرمایا کہو. اب یہاں سے آگے دعا کا ترجمہ, اور آپ اس ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس دعا سے محبت کریں کہ کتنے خوبصورت طریقے سے اس دعا میں انسان اپنے گناہوں کا اللہ کے سامنے اظہار کرتا ہے. اے اللہ, میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے. سوچئے, ہر گناہ ظلم ہے نا, کیونکہ وہ حق نہیں تھا نفس کا. اور تیرے سوا کون ہے جو گناہ بخشے, یعنی کوئی ہے ہی نہیں. تم مجھے اپنے ہاں سے خاص بخشش سے نواز اور مجھ پر رحم فرما, یقیناً تو ہی بخشنے والا مہربان ہے. بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. ایک ایک لفظ کو ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہم, گناہ اللہ اور بندے کے بیچ کا ایک راز ہے, اس کو دوسروں کے سامنے نہیں کھولنا چاہیے. آج کرسچینٹی میں کفارے کے نام پہ, پارڈن کے نام پہ جیزس ہمارے گناہوں کی معافی میں سلیب پہ چڑھ گئے, اور اسی طرح مسلمانوں میں بھی بعض دفعہ بزرگوں اور قبر والوں کے پاس جا کے اپنے گناہوں کا اظہار کرنا, یہ اس لفظ کے خلاف دکھتا ہے. میں نے گناہ کیا نا, میں خود ہی اپنے رب کے پاس چلی جاؤں گی, میں آپ کو کیوں کہوں کہ پلیز میرے اس گناہ کی معافی مانگ دیں. اور آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ کرسچینٹی میں پارڈن بکتی ہے, بہت آؤ ہوتا ہے ان کے پریسٹ اور لوگوں کے سینرز کے بیچ میں. کتنے والی پارڈن چاہیے, $100 والی, $200 والی کے, $500 والی؟ اللہم, اے میرے اللہ, آپ اس کو امیجن کریں کہ بچے سے کوئی غلط کام ہو گیا تو فوراً واقعہ آتا ہے, امی میری امی, کیا انی ظلمت نفسی, میں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا. ظلم کا لفظ سمجھ آئیں گے تو آپ کو گناہ کی اصل بھی سمجھ آئے گی. ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے غیر مناسب جگہ پہ رکھنا. ود شیئن فی غیر محلہ, مثلا یہ گلاس ہے, مجھے اس کو اس جگہ رکھنا چاہیے نا. اگر میں اس کو یہاں کی بجائے ادھر رکھ دوں اور بے خیالی میں میرا ہاتھ لگے تو یہ گلاس نیچے گر جائے گا نا, تو یہ گلاس پر ظلم ہوا. ظلم کی ابتدا اللہ کے ساتھ ظلم پہ ہوتی ہے, جس کو سورۃ لقمان میں کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم, کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. اللہ والا حق بندوں کو انسان دینے لگتا ہے. اس کے بعد ہمارے نفس پہ ظلم کیسے, جیسے کہ یہاں بات ہے, تو یہاں سمجھ لیجئے کہ نفس پہ ظلم کیا ہے. فطری طور پر ہمارا یہ جو نفس ہے نا, جس کو میں کہتے ہیں, میں, آپ کہتے ہیں نا میں آ گئی, میں نے کھایا, میں بیٹھ گئی, تو میں آپ ہے, یہ آپ کا نفس ہے. یہ جو باہر کا کپڑے ہے نا, جو ہمارا باہر کا لبادہ ہے, یہ اوپر ایک کورنگ ہے. اصل اندر جو ہماری روح, آپ کہتے ہیں میرا دل چاہ رہا ہے, میں اداس ہوں, میں خوش ہوں, وہ میں آپ کا نفس ہوتا ہے. बिल्कुल आप इसको अगर इमेजिन कर सके कि अंदर की तारे जुड़ी हो ना, ये माइक है। देखिए ये जो बाहर है ये काले रंग का लंबा सा, ये डंडी, ये नीचे स्टैंड, अगर आप इनको हटा भी दें तो माइक चल सकता है ना। अंदर जो इसकी तारें लगी हुई है ना, जो एक से दूसरी जुड़ी हुई है, ये नफ्स है। हमारा नफ्स असल में हमारी रूह है, आप ये कह लें, और रूह अल्लाह की तरफ से आई है। सूरत अल अराफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आगे भी आता है कि मैंने खुद अपनी रूह फूंकी आदम में, बनाया फिर संवारा फिर फनफख्तु फीही मिन रूही। ठीक है, अब हमारी रूहें अपने हमारे अंदर जो है ना, ये बहुत नेक हैं, बहुत अच्छी रूह है, अल्लाह वाली रूह है। ये नहीं चाहती गुनाह करें, ये चाहती हैं कि जिस हालत में हम इस दुनिया में आए थे, मासूम आता है बच्चा, इसी हालत में दुनिया से वापस चले जाए। लेकिन जो अल्लाह ताला ने साथ नफ्से हमारा लगा दिया और जो हम गुनाह करते हैं ना, तो वो से एक सफेद कागज, आप देखिए कि आप इसको सोचिए ना कि ये हमारी रूह है, जब बच्चा दुनिया में आता है तो इस सफेद कागज की तरह गोरा चिट्टा होता है। लेकिन हम गुनाह करके इस रूह को इस तरह काला कर देते हैं कि बाज दफा वो धब्बों में आ जाता है, बाज दफा उसमें सुराख होते हैं। तो हमारी रूह चीखती है जब हम गुनाह का काम करते हैं। आप रात को सोना चाह रहे थे, आप एक मूवी लगा लें, आपको नींद ही भाग जाएगी, वजह क्योंकि रूह चीख रही है। जिस्म को तकलीफ होती है तो नींद नहीं आती। इस तरह जो हमारे गुनाह होते हैं ना, ये हमारी रूह को दागदार करते हैं। अच्छा, जब रूह पे गुनाहों के घाव लगते हैं ना, तो उससे इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है और एक वक्त आता है कि फिर गुनाह करना मुश्किल नहीं लगता। पहला गुनाह बहुत मुश्किल होता है, ऐसे ऐसे गुनाह आसान होते जाते हैं। पहले सफेद कागज से ना, आप खुद देखिए, आप अभी धोबी धुले हुए साफ सुथरे कपड़े पहन के आई, कितनी आप एक्साइटेड होंगी। जरा सा पसीना भी आए तो आप कहेंगे ओहो कपड़ों में पसीना आ जाएगा। खाना खाएंगे अभी आप तो आप देखेंगे वो कपड़ों में ना लगे। लेकिन जब वो वाइट कपड़े पहने हुए आपको एक पूरा दिन गुजर चुका हो, और अगर आप उसी में सोने के भी आदि अगले दिन उठे, तो क्या आप उतने केयरफुल रहेंगे? कहते हम गंदे तो हो ही गए हैं, धो लेंगे फिर। यही बिल्कुल तदरीज होती है गुनाहों की। हम शुरू में गुनाह करते हुए बहुत झिझकते हैं, हमें बहुत मुश्किल लगता है, हमारे हाथ पांव फूलते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर हम इतने आदि हो जाते हैं तो कोई मजा आने लगता है उसमें। आप देखिए गंदगी का भी एक नशा होता है। लोग कहते हैं जो करना पे इधर ही छिलके रख लो, काम कर रहे हैं किचन बाद में समेटना ही है ना, इधर ही खुले ही छिलके फेंकते जाओ, और काम करते हुए पूरा किचन ऐसे लगता है कि जैसे कोई इस तरह से उन्होंने अपने लिए कचरे की जगह बनाई हुई है। तो नफ्स पे जुल्म, जुल्मन कसीरा क्या है कि मैंने अल्लाह इस साफ कपड़े को खराब कर दिया, कभी आंखों के रास्ते, कभी कानों के रास्ते, कभी जुबान के, कभी दिल के, कभी दोस्तों के लिए, कभी घर वालों, कभी शोहर, कभी बीवी, और होते होते अब हाल क्या हो गया कि मैं जुल्मन कसीरन, और जुल्म काले रंग को भी कहते हैं, जुलुमात को हदीस में आता है कि जुल्म क्यामत के दिन अंधेरों का सबब होगा। तो अब मैं काला हो चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, वला यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता, कोई गुनाहों को माफ नहीं करने वाला आपके सिवा। ये है वो चीज जो बंदे को होप देती है। करो क्या, फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, अपने पास से बख्शिश दे दो, कवर कर ले। अब ये गफ़रा को समझ जाएंगे ना, तो वो जुल्मत जुल्म की कैफियत को समझें। गफ़रा किसको कहते हैं? ढांप देना। देखिए एक खास हद तक इंसान किसी चीज़ को साफ रखता है, जब नहीं होती ना तो कहते हैं अब इसकी साइड पलट दो, ये नहीं, जब साफ होगा ये धब्बे पक्के लग गए, अब इसके ऊपर एक और चादर बिछा दो। जैसे ये टेबल क्लॉथ डला हुआ है, हम इसको साफ रखने की कोशिश करें, करते रहें, लेकिन हो सकता है इस पे इतने छोटे छोटे धब्बे पड़े तो हम कहेंगे कि अब इसके ऊपर एक और सफेद कपड़ा डाल दो, ये साफ नहीं होगा। तो गफ़रा क्या है? इस नफ्स के कपड़े के ऊपर एक और कपड़ा डाल दो, छुपा दो इसको, और आगे वरहमनी क्या, कि अब इसके बाद नेकियों की भी तौफीक दो। ये वरहमनी नया कपड़ा है, कुरान पाक में भी आता है, सूरह हामीम सजदा में भी, कि जब कभी तुमसे कोई बुरा काम हो जाए तो उसके पीछे अच्छा कर दो, क्योंकि इदफा बिल्लती ही अहसन फैज़ल्लज़ी बैनका वबैनहु अदावतुन कान्नहु वलीयुन हमीम, कि कभी कोई बुरा मामला किसी इंसान से हो जाए ना, तो उसके बाद उसके साथ अच्छा मामला कर लिया करो, तो वो तुम्हारा दिली दोस्त बन जाएगा। तो जब इंसान गुनाहों वाली जिंदगी गुजार के इतने गिल्ट से गुजरा होता है ना, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं कल किसी से कोई बात कर रही थी तो मैंने कहा कि जो चीज मैंने यहाँ देखी कि यहाँ तो यूथ भी डिप्रेशन में है, बड़ी स्ट्रेंज बात है। वैसे लोगों को समझ नहीं आती, पहले सुना हुआ है कि लोग बड़ी उम्र में जाके डिप्रेशन में चले जाते हैं, शादी के बाद चले जाते हैं, और आप इस बात की तस्दीक करेंगे कि यहाँ आप देखिए क्या है जी, शादी हुई फिर उसका बच्चा हुआ तो डिप्रेशन में चली गई, बच्चे के बाद डिप्रेशन यहाँ कितना आम है। हमारी अपनी स्टूडेंट्स में से एक ऐसी है, अच्छी वाली एक्टिव लड़की, शादी हुई, इसके बाद बच्चा हुआ, बच्ची पैदा हुई तो वो जी अब आ नहीं रही, आनी डिप्रेशन में, रोती 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 रोती। दो तीन केसेस ऐसे सिर्फ हमारे अपने सामने के। तो डिप्रेशन किस चीज़ का है? गुनाहों का। या खौफ, शैतान हमें मायूस करता है। तो जब हम कहते हैं अल्लाह पिछले गुनाहों को छुपा दे और आगे से नेकियां करने की तौफीक दे, इन्नक अंतल गफूरुर रहीम, तो बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि ये दुआ अल्लाह के नबी किसको सिखा रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक को। मैं जब ये पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि हम तो सोचते हैं अबू बकर का तो कोई गुनाह ही नहीं होगा, हर वक्त नेकियों के लिए तैयार, हर वक्त गुनाहों से भागने लगे, लेकिन याद रखिए इसके बावजूद भी मिट्टी पड़ जाती है। आप सफेद कपड़े पहन के जाते हैं तो उसके बाद आप ना भी कुछ दाग ऊपर लगने दें, इर्द गिर्द से फिजा से मिट्टी आ जाती है। तो बड़े शौर के साथ जरा इस दुआ को मिलकर मांगिए और बिल्कुल अपने गुनाहों को सामने रखते हुए शौर के साथ मांगेंगे। दुआएं पढ़नी नहीं है, मांगनी आपके दिल की पुकार हो कि अल्लाहुम्म इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم آمين। इसको याद करें। आप में से कितने लोग हैं जो पढ़ते हैं इसको नमाज में? तो अब बाकी भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली भी दुआएं जो हम इसमें करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत दुआएं हैं, और वाकई ऐसे लगता है कि हमारी नमाजें तो फीकी थी इन दुआओं से पहले।